ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कानानास्किस में इस महीने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर बैठक में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश और उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की जनता के बीच गहरे संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं। ओटावा में संवाददाताओं से बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 सम्मेलन उभरते और विकासशील देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत होगी। G7 शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में होगा। भारत और मध्य एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधिमंडलों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित पहले भारत मध्य एशिया दुर्लभ मृदा मंच के परिणामों की सराहना करते हुए इन देशों के मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द दूसरी भारत मध्य एशिया दुर्लभ मृदा फोरम बैठक आयोजित करने का आह्वान किया। मध्य एशिया के देशों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अधिक वित्तीय लेन देन के महत्व पर जोर दिया। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी दसा एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत के राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देश की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के एयरोस्पेस बुनियादी ढांचे में यह महत्वपूर्ण निवेश है और इसके विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगी। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। पहला ढांचा 2028 में बनने की उम्मीद है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री भी है। कल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सुदूर कवंडे गांव के दौरे पर थे। करीब 12 नक्सली जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, उन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस ने संविधान की एक प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पण करने पर सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
बकरीद या कुर्बानी का ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में होगी। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस त्यौहार को त्याग, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतीक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लोगों को बकरीद की बधाई दी। उन्होंने कामना की कि यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशी, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आए। फ्रेंच ओपन महिला एकल के फाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना साबालेंका का सामना विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कोको गाफ से होगा। पुरुष एकल के फाइनल में जैनिक सिनर का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।